विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। जैसे कि मैंने कहा था अपने पहले कार्यक्रम में कि अगर डॉक्टर सैयद जाकिर अली साहब मुझे समय देते हैं, मौका देते हैं, तो मैं एक बार फिर उनसे दास्तान, नॉवेल और अफसाने के बारे में अधिक जानकारी आपके लिए प्राप्त करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने हमारी बात मान ली और वो आज हमारे बीच में मौजूद है। नमस्ते सर।
नमस्ते सर। नमस्ते
सर। जैसे कि पहले कार्यक्रम में आपने बताया नॉवेल, दास्तान और अफसाना के बारे में,
जी जी,
अभी मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक जानना चाहूँगा। एक जो दास्तान है बहुत मशहूर है, अफसाना अजाइब,
फसाना अजाइब,
हाँ
जी,
और दूसरी जो नॉवेल के तौर पे है उमराव जान,
जी उमराव जान।
तो ये पहले दास्तान और ये जो नॉवेल है
जी,
वो किसने लिखा और उसके मुख्य किरदार कौन है?
देखिए सर, जो फसाने अजाइब है तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि ये ऐसी दास्तान है जो रजब अली बेग सुरूर, बड़े अपने ज़माने के अच्छे लिखने वाले थे। इनके लिखने की एक ख़ास बात ये थी कि लिखाई दो किस्म की होती है, एक होती है बेतकल्लुफ़ और दूसरी होती है बना संवार कर लिखना। तो आपने जैसे इससे पहले हमने जिक्र किया था मीर अम्मन की बाग़ो बहार का, बाग़ो बहार ने जैसे आपने उससे मुझसे तो सवाल किया था कि कौन सी दास्तानें सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, तो मैंने आपके सामने इन दो दास्तानों के बारे में ख़ास तौर से नाम लिया था। हालांकि इसके अलावा भी तिलिस्म होशरुबा है, अलिफ लैला है वगैरह, तो ये दास्तानें मशहूर हुई हैं। लेकिन बाग़ो बहार इसलिए मशहूर हुई कि बाग़ो बहार की जो ज़बान थी वो बिल्कुल आम लोगों की ज़बान थी, और आम ज़बान जब, क्योंकि हम जो कह रहे हैं जिसके लिए कह रहे हैं, अगर वो दिल से निकलती है और दिल में जाती है तो ज़्यादा काम की बात हो जाती है। हम अगर पुरतकल्लुफ़ ज़बान, ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो, आइए हुजूर, जैसे एक मिसाल के तौर पर एक गांव का शख्स है, वो गांव वाला हमारे पास में आता है, वो गांव वाला तो बिंदास रहने वाला इंसान है और उसको उसे आओ भैया बैठो, वो यही पसंद करेगा, आइए आइए जी जनाब अली हुजूर वाला तशरीफ़ लाइए, तो अजीब सा महसूस करेगा वो। तो यहाँ पर जो मीर अम्मन ने जो ज़बान इस्तेमाल की थी बाग़ो बहार में, तो उन्होंने बिल्कुल बेतकल्लुफ़ ज़बान, दिल्ली की आम ज़बान जो आम आदमी बोलता है, वो ज़बान इस्तेमाल की थी, इसलिए बहुत दिल को छू गई ये चीज़। रजब अली बेग सुरूर को शायद खटक रही थी और वो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल जानते थे जो इंतहाई पुरतकल्लुफ़ होती है, आइए जाइए, खालिस लखनवी अंदाज़, जिसको नज़ाकत भरा अंदाज कहते हैं हम, इंतहाई नाजुक, नफीस, नपातुला। तो इसके जवाब में, मीर अम्मन की बाग़ो बहार के जवाब में ये दास्तान फसाने अजाइब लिखी गई।
सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि फसानाए अजाइब में
जी
जिस भाषा का प्रयोग किया हुआ है वो हम अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं
जी
उसका इस्तेमाल किया हुआ है, और वो जो भाषा है
जी
वो एक कॉमन मैन की, सामान्य स्त्री पुरुषों की भाषा है, इसके
जी
लिए
जी
वो बहुत इफेक्टिव हो गई।
जी जी।
अभी दूसरा सवाल मेरे मन में ये आता है
जी जी
कि इसके किरदार कौन कौन से हैं कि जिनके जरिए ये जो पूरा संदेश है ये अपने तक पहुंचाया गया हुआ है, इसके किरदार के बारे में जरा हमको बताइए।
देखिए, इसके जो फसाने अजाइब है उसके सबसे अच्छे किरदारों में एक तो जो कहानी को लेकर चलते हैं सर, क्योंकि किरदारों में सर दो किस्म के किरदार होते हैं, एक कहलाते हैं एक्टिव किरदार जिसको हम मुतहर्रिक किरदार कहते हैं उर्दू में, और एक होते हैं जामित किरदार, यानी बिल्कुल जो कुछ नहीं करते जिनका काम सिर्फ एक कहानी को सपोर्ट करना है थोड़ा थोड़ा, यानी वो कोई ऐसी एक्टिविटी उनसे नहीं होती जिससे कहानी आगे बढ़े, बस एक सपोर्टिंग किरदार रहते हैं। तो ऐसे कुछ किरदार जो है इसमें, तो एक जाने आलम का किरदार है, मेहर निगार का किरदार है और अंजुम नारा का किरदार है। ये किरदार इसके इम्पोर्टेंट किरदार हैं, इसके अहम किरदार हैं। इसके अलावा छोटे बड़े और बहुत सारे किरदार उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
सर जैसे कि अभी आपने कहा कि एक्टिव किरदार जो होते हैं
जी
वो बहुत अहम भूमिका
जी
दास्तान में अदा करते हैं
जी,
तो इसके जो किरदार है
जी
ये ऐसा किस तरह का काम करते हैं कि जिसके कारण वो इतने महत्वपूर्ण या अहम बन गए हैं, इसके बारे में जरा बताइए।
नहीं, इसमें तो सर देखिए एक चीज़ है, आप क्योंकि ये जो हमारे सामने जो कहा ये दास्तान है फसाने अजायब, ये लखनवी तहजीब है और लखनवी तहजीब में बहुत ज़्यादा तकल्लुफात हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा रख रखाव हुआ करता था और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो तकल्लुफात की वजह से तकलीफ़ होती है। तो आप अगर इन किरदारों को पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन किरदारों में आपको लखनऊ की बूबास ऐसे महसूस होगी, उसके मुहावरे ऐसे महसूस होंगे कि भले ही वो पुरतकल्लुफ़ सही लेकिन उसकी ज़बान की चाशनी बहुत आपको लुत्फ़ देगी। तो एक चीज़ तो ज़बान पर आपका, जो पुरानी ज़बान से हम वाकिफ़ नहीं हैं उस ज़बान का चटखारा हमारे को लगता है, और आज भी अगर कोई यानी इसको उमराव जान या फसाने अजायब या दिल्ली की ज़बान में उसको मीर अम्मन की बाग़ो बहार वगैरह ये दास्तानें कभी पढ़ी जाती हैं तो आज भी दिल चाहता है कि इनकी ज़बानों को, इनके मुहावरों को, इससे हमारी ओकलबरी बढ़ती है, हमारा ज़खीरा अल्फाज बढ़ता है और हम लोग कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश करते हैं कि अच्छे अल्फाज जो हैं उस ज़माने के, उस ज़बान में जो बोले जाते थे, तो वो अच्छे अल्फाज हमारे समाज में फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो इस तरह से वो किरदार हमारे को इस तरह से एक नई तहरीक देते हैं पढ़ने पढ़ाने की, उनकी अपनी ज़बान की शक्ल में, उनके अपने अमल की शक्ल में, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ में अच्छे मामलात करना, क्योंकि वो कहानी एक बड़ी लंबी चौड़ी तवील कहानी है और इसके लिए मैं इसको यहाँ पर इन्हें मुमकिन भी नहीं है कि उसको बहुत इख्तिसार के साथ भी पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि वहाँ पर आप जब कहानी उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी खसूसियात आपको मिलेंगी कि किस तरह से यानी उस माहौल के अंदर इंसानियत जिंदा थी और किस तरह से उस माहौल में लोग एक दूसरे के दुख दर्द को, एक दूसरे की खुशियों को बांटा करते थे, वो उसके अंदर सब चीज़ें आपको सामने आएंगी।
जैसे कि अभी आपने कहा कि दास्तान के हर किरदार का यह एक जिम्मेदारी की जो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में अंदर रहते हुए जो अपना लोकल विजडम या हम जिसे कहते हैं कि स्थानिक जो लोकल विजडम है, जो लोकल भाषा है, उसी की इज्जत रखना, उसी को बार बार दोहराना, ताकि जो आगे चल के जिसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कि ये जो किरदार है वो अपने को परंपरा का किस तरह से अनुकरण करना ये अपने को सिखाते हैं। सर अभी आपने जिक्र किया उमराव जान का,
जी जी,
तो उमराव जान का ये जो नॉवेल है
जी,
इसके बारे में जरा हमारे विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दीजिए।
देखिए उमराव जान अदा से पहले बहुत सारे उर्दू में नावल लिखे गए। जब हम उर्दू नावल के आगाज़ और इर्तिका की बात करते हैं, यानी उर्दू नावल कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, तो हम नज़ीर अहमद पर हमारी नज़र जाके ठहरती है और डिप्टी नज़ीर अहमद ने बड़े अच्छे नावल लिखे, तो समाजी इस्लाही, जिससे समाज का सुधार हो, जिसमें एक ऐसा मुआशरा जो कसमपुरसी की हालत में, परेशानी की हालत में किस तरह से वो जीता है, समाज में कौन सी बुराइयां हैं, किस तरह से पनप रही हैं, किस तरह से उनका मुकाबला किया, तो उन्होंने वो सब समाज सुधार की नियत से वो नावल लिखे थे। तो उस एतबार से उसमें चूंकि उर्दू में नज़ीर अहमद से पहले कोई नावल नहीं था तो उसमें कुछ कमियां रहीं। तो नावल की एक ख़ास बात होती है सर, किसी भी कहानी के अंदर फन यानी आर्ट और एम्स, उसका मकसद, ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर ये दोनों बराबर बराबर रहे तो ये गाड़ी चलती रहेगी। अगर मकसदियत जिसको बोलते हैं हम, अगर मकसद जो है जिस उद्देश्य से वो नावल लिखा गया अगर वो खुलकर सामने आ रहा है तो उसकी कहानी दागदार हो जाती है, कहानी कमज़ोर हो जाती है। नावल निगार तो ये करता है कि दोनों इस तरह से अपनी बात लेकर चलता है कि उसको ये महसूस भी नहीं होता कि उसने इस पर्पज़ से नावल लिखा है और हमारे दिल में बात उतर जाती है। बागमा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसा इस अंदाज के अंदर तो इन्होंने क्या किया कि कई जगह पर कुछ ऐसे अंदाज से अपने नावल की अपनी बात को पेश की, किरदार के जरिए ही सही, लेकिन ऐसा लगा पढ़ने वाले को कि यार ये इसीलिए इन्होंने लिखा है, ये तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए। अब चूंकि उनके सामने कोई नावल का नमूना था ही नहीं, इसलिए उन्होंने उनकी जो खामी है वो उसको नज़रअंदाज किया जाना ही चाहिए। उनके बाद में और दूसरे नावल निगार आए, सरशार आए, रतननाथ सरशार और तुम्हारे अब्दुल हलीम शरर वगैरह, इन्होंने भी अपने अपने तौर पे अच्छे नावल लिखे। अब्दुल हलीम शरर ने तारीखी नावल लिखे, फिरदौस बरी वगैरह बहुत अच्छे, मलिक अज़ीज़ वर्जीना करके एक नावल है उनका, फिरदौस बरी करके नावल, बहुत अच्छा नावल है। वैसे ही फसाने आज़ाद, जामे सरशार, जामे कोसार नाम से जो नावल लिखे वो रतननाथ सरशार ने लिखे, वो भी अपने ज़माने में बहुत मशहूर हुए और उसमें भी लखनवी ज़बान के बड़े अच्छे, उनका एक खोजी नाम का किरदार है, वो तो ऐसा ज़बरदस्त किरदार है कि वो आज तक भी ज़िंदा है। और उसने वो किरदार इसलिए है कि उसने पुरानी रस्मों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, इसके लिए वो किरदार उस ज़माने में भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है। वैसे ही जब यहाँ तक नावल का ज़माना पहुँचता है मिर्ज़ा हादी रुसवा तक, तो मिर्ज़ा हादी रुसवा ने जो नावल जिसकी हम आपने अभी तस्करा किया सर, उमराव जान, ये उमराव जान अदा इतना अच्छा नावल है कि ये तमाम उसकी फ़न के जितने भी आर्ट होता है उसमें, नावल का जो आर्ट होता है वो सारा का सारा उसमें सिमट कर आ गया है। लखनवी तहजीब, वो ज़माना जिसमें लखनवी तहजीब क्या थी, दम तोड़ रही थी, परेशान हाल थे लोग, नवाबियत ख़त्म हो चुकी थी या रह गई थी बाकी तो आखिरी सांसें गिन रही थी, ऐसे दौर के अंदर लखनऊ का मुआशरा, लखनवी समाज किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, उसका बड़ा प्यारा नक्शा इसके अंदर उन्होंने खींचा है। उसमें उन्होंने सबसे बड़ी खूबी यह है कि नावल के तमाम फ़न को, तमाम आर्ट को उसमें समोया है। दूसरी चीज़, उस ज़माने में तवायफ़, आज अगर कोई तवायफ़ के यहाँ जाता है तो एक बड़ा अजीब समझा जाता है, लेकिन वो ज़माना लखनवी समाज की मैं जो बात कर रहा हूँ तो उस वहाँ उतना ज़्यादा ऐब नहीं समझा जाता था। वो एक तवायफ़ है जिसकी ज़बान से जब वो बात करती है तो ऐसे फूल झड़ते हैं, इतनी खूबसूरत लबो लहजे में वो बात करती है, ऐसे प्यारे प्यारे अल्फाज, जैसा लगता है जैसे कोई फूलों से धुलकर उसकी ज़बान आई हो, तो वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती है। और बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार, जमादार, यहाँ तक के वहाँ पर मस्जिद के इमाम, अब वो भी जो हैं तो वहाँ पर जो है वो उसके दरवाजे पर आते हैं और वहाँ पर उस पर उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उस ज़माने की रस्म रिवाज थी वो। लेकिन वो समाज, वो किस तरह से तवायफ़ बनी, देखिए समाज की एक फैज़ाबाद की रहने वाली सीधी सादी लड़की है जो एक जमादार की बेटी है, एक गुंडे को उसके वालिद जो हैं वो पकड़ते हैं, उसको सज़ा दिलवाते हैं और उसके उससे बदला लेने के लिए वो गुंडा उनकी बेटी को उठा लेता है और वो उसको लखनऊ के बाज़ार में खानम के हाथों में भेज देता है। वो बिक जाती है बच्ची, वहाँ पर तवायफ़ों के माहौल में वो पलती है, बढ़ती है और एक नामी गिरामी तवायफ़ जो है वो बन जाती है। उसमें इतनी खूबियाँ होती हैं कि کہ دیکھیں اس میں اس ناول کی سب سے بڑی خوبی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ اس میں پورا لکھنوی سماج بتایا اس میں, ہر آدمی ہر قسم کا آدمی جو ہے اس میں, سرکاری نوکر بھی ہیں اس میں, رئیس بھی ہیں اس میں, بازار کے کام بازار میں دھندا ویاپار کرنے والے لوگ بھی ہیں اس میں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں وہ وہاں جمع ہو رہے ہیں اور سب کا انٹروڈکشن وہ ناول نگار کروا رہا ہے. لیکن ایسی چیزیں جہاں جو سما جو اس کے گھر میں نہیں آ سکتی, مثال کے طور پر بازار ہے, بازار اس کے گھر میں نہیں آ سکتا, ناول نگار نے کہا کہ کیا ہوا, وہ تو بازار میں جا سکتی ہے, میلے تماشے وہاں پر, میلے تماشوں میں اس کو پہنچا دیتا ہے, سیر سپاٹے اس زمانے میں ہوتے تھے وہاں پہنچا دیتے ہیں, انہیں ہر طرف سے کوئی بھی اینگل سے انہوں نے لکھنوی تہذیب کو چھوڑا نہیں, اور اس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا. اور جو طوائف جو بظاہر لوگوں کا دل بہلاتی ہے, وہ طوائف کا ایک انجام بھی اس نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گاؤں جاتی ہے اور کس طرح سے اس کی ماں اور اس کا بھائی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب وہ معصوم بچی جو گھر سے غائب ہوتی ہے اس کا اس میں کیا دوش ہے, لیکن وہ اس کو سمجھے, اس کی مجبوریوں کو سمجھے بغیر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ روتی ہوئی اپنے واپس اسی بازار میں چلی جاتی ہے.
سر جیسے کہ آپ نے کہا تھا اپنے پچھلے کارکرم میں کہ جو ناول ہے
جی
وہ ایک واستوکتا کا آئینہ ہے
جی,
اور وہ جو پرچلت سمسیائیں ہیں ان کا وہ ورنن کرتا ہے اور اپنے سامنے پیش کرتا ہے
جی.
تو امراؤ جام میں ایسی کون کون سی سمسیائیں ہیں کہ جن کو درشایا گیا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ استریوں کے جو حالات ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے ورنن کیے ہوئے, اور کون کون سی سمسیا ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساماجک سمسیا کے ناطے ان کو چترت کیا گیا ہے, اس کے بارے میں
دیکھیے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں اس کا مقصد جو تھا تو وہ لکھنؤ کے ایک معاشرے کو اور بتانا, یہ لکھنوی معاشرہ یہ ہے. دوسری چیز کہ اس معاشرے میں کیا چل رہا ہے وہ چیز اس نے پیش کیا ہے. تیسری چیز کہ ایک بے گناہ کو بازار میں بیٹھنا پڑ رہا ہے, وہ بازار میں بیٹھ رہی ہے اور اس قدر مجبور, یعنی قسمت اس کو کہاں سے کہاں لے کے آ گئی ہے کہ ایک شریف گھر کی بچی ایک بازار کی طوائف بن کے بیٹھی ہے. تو یہ سماج کا ایک بڑا دوش ہے, ایک سماج کا بڑا دوش ہے. حالانکہ اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سماج اس کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ سماج کے بڑے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, سماج کا ذمہ دار طبقہ بھی اس سے مل رہا ہے. تو کیا وہ اس کی اس حالت سے واقف نہیں ہے؟
برابر.
پھر آخر کیا بات ہے کہ وہ لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے؟ تو یہ سماج کی بے حسی کہ سماج جو ہے وہ ایک جم کے رہ گیا ہے اپنی جگہ, اپنے حال میں مست ہے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے, اس کو صرف یہ ہے کہ یہ سماج میں بازار میں بیٹھی ہے اور اس سے مجھے اپنا دل بہلانا ہے, اپنا وقت اس سے گزارنا ہے. تو یہ سمسیائیں جو ہیں وہ اس ناول کے ذریعے سے وہاں پر پیش کی. ایک مجبور عورت کی زندگی جو امراؤ جان ادا ہے, وہ ایک مجبور عورت ہے جو جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس سے اپنا دل بہلائے, اس میں جو خوبیاں ہیں اس سے لطف اٹھائے, اس کا مزہ لے اور اس کے بعد میں اپنا وقت گزارے. لیکن اس کے یعنی اس کے اندر جو آگ دہک رہی ہے, اس کے اندر جو غم ہے, اس میں کوئی اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے.
سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے, دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی اتنی فرصت اور اتنی بھاونا کوئی رکھتا نہیں ہے. ابھی امراؤ جام میں ایسے بہت سے کردار ہیں جو اسے اس دلدل سے باہر نکالنے کے لیے یا اس کے سکھ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں, تو امراؤ جان کے مدد کے لیے ایسے کون کون سے کردار لکھک نے یہاں پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جو امراؤ جان کو जब वो समस्या में रहती है या उसे कुछ अड़चन आ जाती है, डिफिकल्टी आ जाती है, तब वो उनसे अपने दिल की बात कह सके और कुछ मदद उनसे ले, ऐसे किरदार होंगे इसमें, तो वो कौन कौन से किरदार हैं?
देखिए, इसमें सर एक तो गौहर मिर्ज़ा का किरदार है, जो एक नौजवान लड़का है, खूबसूरत है और उसको पसंद करता है। दूसरी एक उसकी एक सहेली है, जो बचपन में उसी के साथ में बेची गई थी, क्योंकि जब वो उसको फैजाबाद से लखनऊ लाया जाता है, तो देखिए इत्तेफाक से कहानी को कितने खूबसूरत मोड़ पर लाता है लेखक ने, कि वो दोनों एक साथ रहती हैं और दोनों अलग अलग बिक जाती हैं, और वो लड़की जो है वो एक नवाब खरीद लेता है, और ये तो तवायफ के कोटे पे खानम खरीद लेती है, ये तवायफ के कोटे पे बैठ जाती है। तो जब ये लड़की जब तवायफ जब उनके यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में इसको बुलाया जाता है, उमराव जान को, तो सबके जाने के बाद जब प्रोग्राम हो जाता है, उसके जाने के बाद में वो बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना क्या? वो नवाबजादी जो नवाब की बेगम जो है अलग से बोलती है, तुमने मुझे पहचाना क्या? तो कहती, नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो कह, याद करो तुम्हारे साथ फैजाबाद से लखनऊ एक और लड़की लाई गई थी। तो वो एकदम पुरतब उसको ख्याल आता है, रे। तो वो एक किरदार उसका, वो गौहर मिर्ज़ा का किरदार, और एक फैसू नाम का एक और शख्स है जो उसको बहुत ज़्यादा चाहता है। वो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो भी उस वो इस दलदल से निकल कर। तो ये ऐसे कुछ किरदार हैं, इसमें सबसे अहम किरदार जो है तो वो गौहर मिर्ज़ा का ही है, जो उससे उसे चाहता है और वो उससे अपने दिल की बात वो कहती है उसे।
जैसे कि आपने कहा कि उमराव जान को मदद करने वाले भी थे, उसे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए प्रयास करने वाले भी थे, लेकिन ऐसे क्या हालात हुए होंगे जैसे वहाँ वर्णन किया गया है, कि जिस कारण
जी
उमराव जान अपने आप को वहाँ से अलग नहीं कर पाई, या उसे वो स्वतंत्रता नहीं मिली कि ये सब छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि ये दिखा के लेखक ने जो प्रचलित विचारधारा है स्त्रियों के प्रति या तवायफ के प्रति, उस पर एक बहुत बड़ा अटैक किया हुआ है, बहुत बड़ा हमला किया हुआ है, ये आपको ऐसा लगता है क्या?
देखिए सर, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि वो क्यों नहीं गई। इसका जवाब उसने खुद मुसन्निफ उसके राइटर ने आखिर में दिया है,
अच्छा
और दूसरों की बात तो बहुत दूर, उसका अपना खून, जो उसकी माँ है, माँ का रिश्ता औलाद से सबसे ज्यादा मजबूत होता है,
बराबर
और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुकी होती है कि ये समाज मुझसे दिल तो बहला सकता है, मुझे गले लगा सकता है, लेकिन अपने घर नहीं ले जा सकता। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस बाजार में बैठती है उसमें बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते हैं उसके सामने, और वो इतना उसकी अक्ल उसका उसकी सूझबूझ उस हद को पहुंच जाती है। तो कहीं इसका जवाब इसीलिए आखिर में होता है कि जब उसके भाई और उसकी माँ जब उसको गले लगा नहीं सकते, तो फिर औरों की बात क्या की जाए। यानी वो जानती है कि समाज में आज वो जिस मकाम पे खड़ी है, तो वहाँ पर उसके लिए कोई जगह नहीं बची है कि सिवाय इसके कि वो बाजार की चीज़ है, बाजार में ही अच्छी लगेगी।
और अगर वो भाई और माँ जो उसको स्वीकार नहीं कर सकते, ये तो एक अपनी सामाजिक व्यवस्था है कि अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया होता तो उनको भी समाज ने जीने नहीं दिया होता, तो
ये
ये
उनकी
भी एक,
मजबूरी।
हाँ, तो ये जो अटैक है वो लेखक ने अच्छी तरह से किया है। उमराव जान अदा करके एक और वैशिष्ट्यपूर्ण इसमें एक घटना है, या उसके बारे में जरा बताइए कि उमराव जान अदा क्या है, उसका क्या लक्षण है उसके, और उसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जरा बताइए।
देखिए, उमराव जान अदा जो है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो कबूल सूरत है,
कबूल सूरत है।
जिसको देखकर कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी सूरत उसकी ज़रूर है कि वो जो भी देखे उसको कहीं ना कहीं उसके दिल में वो घर कर ले। दूसरी एक चीज़ ये कि जैसे वो कहते हैं ना कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ये खुदा करते हैं कत्ल, हाथ में तलवार भी नहीं।
बराबर
तो सादगी भी एक कयामत की अदा होती है,
बराबर
तो उसमें भले ही हुस्न ना हो लेकिन वो खूबसूरती तो उसमें थी। दूसरी एक चीज़ कि वो ज़बानो बयान पर उसका बड़ा ज़बरदस्त कुदरत थी, शायरी जानती थी। अच्छा, उस ज़माने में जो मुजरे हुआ करते थे वो मुजरों में उसकी महारत थी, और सबसे बढ़कर ये कि उसमें एक अच्छे इंसान का दिल था। वो समाज को अच्छी निगाह से देखती थी, समाज को समझती थी, समाज चाहे उसको समझे न समझे लेकिन वो चाहती थी कि जो कुछ वो दे रही है उसे लोग कबूल करें। तो उसी बहुत सारी वो खूबियों की मालिक थी, चाहे वो अंदर से टूटी फूटी ही सही, लेकिन एक बेहतरीन किरदार के रूप में उमराव जान अदा जो है वो उसको राइटर ने पेश किया है।
सर, जैसे अभी आपने कहा कि उमराव जान को समाज ने नकारा था, फिर भी उमराव जान ने समाज पे प्यार किया, समाज के लोगों को समझ लिया, और इस तरह का जो एक तरफी ये जो प्यार है समाज के प्रति, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि उमराव जान के इस अदा में समाज को एक सुधारने की भी कुछ ऐसी एक हेतु रहा होगा, उद्दिष्ट रहा होगा, एक उसका कुछ
मकसद रहा होगा
मकसद रहा
जी।
होगा कि मैं अपने अच्छे बर्ताव से समाज के लिए या समाज के कुछ व्यक्तियों को सुधार सकूं, ताकि स्त्रियों के प्रति देखने का जो उनका नजरिया है वो बदल जाए। आपको ऐसा लगता है क्या?
बिल्कुल सही है सर, क्योंकि उन्होंने जिस माहौल में यह कहानी लिखी है उस कहानी को लिखने का पर्पस भी उनका यही था। और चूंकि जैसा मैंने बताया कि उन्होंने जिस अंदाज में उसको बढ़ता है कि मकसद को उस पे सामने नहीं आने दिया, लेकिन जैसा कि अभी आपने महसूस किया, पढ़ने वाला हर आदमी जो उसकी डीप में उतरेगा तो कहीं ना कहीं ये महसूस करेगा कि आखिर उन्होंने इस समाज की इसी औरत को क्यों अपने नॉवेल की हीरोइन बनाया। तो यही पर्पस था उनके सामने कि इस समाज के अंदर औरत की एक क्या दशा है कि एक खिलौना बन के रह गई है वो, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन एक बार टूट गई सो टूट गई, उसको कोई गले लगाने वाला नहीं, फिर चाहे उसके अपने ही क्यों ना हो। तो ये समाज की एक जो प्रथा है, ये समाज की एक सोच जो है, ये सोच पर उन्होंने एक जर्ब लगाया, एक उसको बेदार करने की, जगाने की कोशिश किया कि आखिर हम ये क्या ऐसा करके समाज इंसाफ कर रहा है उसके साथ में, तो समाज की ये नाइंसाफी है जिसके खिलाफ उन्होंने दबी दबी जबान में एक आवाज उठाई है और उसके जरिए से उन्होंने इसको पेश किया है।
सर, उमराव जान ये तो बहुत प्रसिद्ध जाना माना नॉवेल
जी
है,
जी
लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं या अपने बच्चे वो पढ़ेंगे, तो किन किन बातों का उन्होंने ध्यान देना चाहिए? कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहानी में इतने भय जाते हैं कि बहुत से ऐसे छोटी छोटी जगह जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो अपने नज़रिए से छूट जाती है,
जी
और हम कहानी में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि अंत में जब कोई पूछता है या उस पे जब सवाल आएंगे बच्चों को, तो उन्होंने किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि इसका अध्ययन बहुत अच्छी तरह से उनके द्वारा हो?
देखिए सर, नॉवेल चाहे उमराव जान हो या और कोई भी, जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमको उसमें ये देखना है कि कहानी के अंदर जो छोटे छोटे वाकयात, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जिसको एक जिस तरह से एक माला के अंदर जिस तरह मोती पिरोए जाते हैं, तो वो उसका कांटेक्ट एक दूसरे से बराबर है या नहीं है, जिसको हम प्लॉट की शक्ल में देखते हैं।
बराबर
दूसरी चीज, जिस माहौल में वो कहानी लिखी गई है उसके माहौल के मुताबिक उसमें वो कैरेक्टर हैं या नहीं है, उसमें कैरेक्टर गैर जरूरी, जो अननेसेसरी जिसको हम कहते हैं, तो गैर जरूरी कैरेक्टर तो उसमें शामिल नहीं है। तीसरी चीज, जो कैरेक्टर पेश किए गए हैं उनकी जबान उनके इलाके के उनके क्षेत्र के हिसाब से वो है या नहीं है। चौथी चीज के उनके रुतबे के एतबार से वो जबान और बयान कितनी अच्छी है और कहाँ तक दुरुस्त है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों के बाद में ये चीज़ के इस, क्योंकि कहानी का एक मकसद होता है, तो उसमें झांकने की कोशिश करना चाहिए कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है,
क्या
जिसको मरकजी ख्याल कहते हैं, कि जिसकी जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस तरह से हमको उसको टटोलना चाहिए कि इसमें मरकजी किरदार जो है वो इसका उमराव जान का है। तो उमराव जान मरकजी किरदार क्यों? इसलिए कि कहानी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो हमको उसको टटोलना चाहिए कि ये एक शरीफ घराने की बच्ची थी जो एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की वजह से मासूमियत के आलम में बचपन से वो अपने घर से माँ बाप से जुदा करके बाजार में लाकर बिठा दी गई और उसके बाद एक तवायफ के रूप में सामने आ गई। तो इस तरह से ही वो चीज़ें हमको तलाश करके और फिर उस पर गौर करना चाहिए कि उसमें फिर क्या मकसद था। इसका मकसद यही है कि समाज कम से कम इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो हालात होते हैं, इस तरह के मामला जो होते हैं, उस पर समाज की नज़र होना चाहिए। और अगर हम कहीं देख रहे हैं तो अगर बुरा हम नहीं कह सकते तो कम से कम बुरा समझ सकते हैं, उसके लिए हमदर्दी का जज्बा अपने अंदर पैदा होना चाहिए, ताकि आज नहीं कल ज़िंदगी में अगर ऐसा मामला हमारे सामने आता है तो हम खामोश न रहें, अखलाकी तौर पर सही मॉरल सपोर्ट उनको हम दें, ताकि उनको ज़िंदगी का जीने का एक हौसला मिल सके।
सर, जैसे कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपसे पूछा था
जी,
कि हमारे जो काउंसिलर है
जी,
जब वो उमराव जान के बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे, तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस या कौन कौन सी बातें खास तौर पे स्टूडेंट्स को बताने चाहिए, जो उमराव जान के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति जो दृष्टिकोण है, और आगे चल के उसका जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वो अच्छी तरह से कर पाए, इसके लिए अपने जो टीचर है ये पढ़ाने वाले, उनको आप क्या सलाह देंगे?
सर देखिए, एक अच्छे टीचर की जैसे मैंने उस वक्त बात बताई थी, मैं आप थोड़ा सा उससे एक और बात आगे जाके कह रहा हूँ कि हमारे पास में दो ऐसे किताब घर हैं अलीगढ़ के अंदर, एक है मकतबा जामिया और दूसरा है एजुकेशन बुक हाउस। अगर हमको ऑथर का नाम नहीं भी मालूम, आप सिर्फ उनको एक फ़ोन कर दीजिए कि सर हमको ये उमराव जान अदा, क्योंकि हम अपने एंगल से सोचते हैं, एक बड़ा राइटर जो होता है उसके एनक से भी हमको देखना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि हमारी अक्ल वहाँ तक नहीं जा सकती। वो चूंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, इसके लिए उसका हमसे ज़्यादा जहन खुला हुआ है, हमसे ज़्यादा समझने की वो अक्ल रखता है, तो अब हमको उनके नज़रियात पढ़ना है कि उन्होंने किस एंगल से इसको देखा है। इसके लिए हमारे पास में ये दो किताब घर जो बहुत आसानी के साथ में हमको यहाँ पर बेचते हैं, उसके अलावा मुंबई वगैरह के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं, मालेगांव में मिलती हैं, तो हमको जो क्रिटिकल जो लिटरेचर है
बराबर,
तो इसके पढ़ने के पहले हम क्या कर रहे हैं कभी कभी कि उमराव जान के ऊपर कोई आर्टिकल है, हमने उमराव जान पर आर्टिकल पढ़ लिया, आपने लिखा, आपका पढ़ लिया, इनका लिखा, लेकिन हमने कभी उमराव जान पूरा नॉवेल पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो पहले हमको वो उसका तख्लीकी अदब, जो एक्चुअल असल कहानी है, पहले हमको वो दो चार मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद में फिर हमारे पास में जो जो राइटर जिन्होंने तनकीद निगारों ने जिस तरह से नावल की तनकीद पर लिखा है, तो वहाँ से सिर्फ हम दो लफ्ज़ अगर लिख दें कि हमको उमराव जान अदा पर कुछ अच्छी किताबें भेजिए, देखिए आपके पास में लाइन लग जाएगी किताबों की, और इतने एंगल से आपको इमराजा नजर की तस्वीर नजर आएगी कि आप खुद सोच के हैरान होंगे कि वाह इतने। तो उसके बगैर हम एक अच्छे बच्चों को अपने ज्ञान नहीं दे सकते, नॉलेज नहीं दे सकते।
सर, शायरी का बहुत बड़ा हाथ उमराव जान में या बहुत महत्व रहा है
जी,
शायरी
जी,
का
जी।
और उमराव जान की जो शायरी है
जी हाँ,
वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली है।
जी जी
तो ऐसे और कौन से शायर है या शायरी है जिनको हम कह सकते हैं कि ये उमराव जान के बराबर या थोड़े आगे पीछे है, कि जिसको मालूम करने के लिए या करने के बाद स्टूडेंट्स ये शायरी उमराव जान की अच्छी तरह से जान लेंगे, इसके बारे में ज़रा बताइए।
सर देखिए, शायरी क्या दिली जज्बात का इजहार है, और दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है।
क्या बात है।
जब हम अगर शायरी पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, और जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम
क्या
होती है।
क्या?
तो हमारे पास इतने इतनी तवील इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है शायरों की कि अगर हम उसको पढ़, जैसे मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर है, गालिब है, ये तो पुराने में क्लासिकल शायरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उनको वहाँ से आप छोड़ भी दें तो फैज़ अहमद फैज़ है, अहमद फराज है, कतील शिफाई है, और ऐसे अभी फ़िलहाल मुनव्वर राना वगैरह, ये इतने अच्छे अच्छे अशार कह रहे हैं। जब हम इनकी शायरी पढ़ते हैं तो वाकई हमको ऐसा लगता है कि फिर हम शायरी की तरफ खुद ब खुद हमारे कदम जो है वो हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, और तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, यहाँ रहकर तो पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। तो जब हम शायरी पढ़ते हैं सर, तो उसके बाद में हमारा दिल खुद ब खुद जो है उधर खींचा चला जाता है, और उमराव जान क्या, फिर हम जितने भी शायर हैं उनको हमारा दिल चाहता है कि हम उनको पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें। तो उस लाइन की बहुत सारी शायरी हमारे पास में मौजूद है।
तो मैं ये चाहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं
जी,
वो जब उमराव जान पढ़ेंगे
जी,
तब शायरी के बारे में थोड़ी और जानकारी कर ले, तो उमराव जान समझने में उनको और सहजता होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, अपने टीचर ने क्या करना चाहिए ये भी आपने बताया
जी जी,
और उमराव जान में ऐसे कौन कौन से शब्द आपके हिसाब से है कि जो बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, या वो समझने के लिए बच्चों ने कुछ एक अलग सा प्रयास करना चाहिए, ऐसे क्या लगता है आपको कि माहौल या कुछ शब्द उस जमाने के?
सर असल में वैसे उमराव जान तो बहुत अच्छी जबान में लिखी हुई है, और मेरे ख्याल से अगर बच्चों को दिलचस्पी है जबान से, भाषा अदब से, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से उनको परेशानी हो। हाँ, ऐसे कुछ मुश्किल मुश्किल अल्फाज वो हो सकते हैं कि जिसके मानी उनको नहीं मालूम हो, तो उसके लिए तो हमारे पास में लुगात जो बोलते हैं, फिरोज़ुल लुगात है, नूरुल लुगात है, लुगात किश्वरी, और ये बहुत सारी लुगात हमारे पास में हैं, तो उनको हम मीनिंग उसके तलाश कर सकते हैं। उसके अंदर हमको जो हमारी मालूमात में इजाफा जो बन सकती है, जो चीज़ें, ये तो खैर हम लुगात से हासिल कर सकते हैं, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, उसमें उस जमाने के जो बोलचाल थी, जिसका अंदाज जो था, वो जो अंदाज था वो खास उसी जमाने तक महदूद था, जो आज हमको ना तो सुनने में आता ना कहीं पढ़ने में आता। तो कम से कम उस जमाने के की ज़बान बयान जो है वो हमको बड़ा अच्छा मज़ा देती है, बड़ा अच्छा, यानी उसको पढ़ने के बाद ऐसा वाकई कुछ देर के लिए हम खो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि वो उमराव जान की ज़बान से जो हम सुन रहे हैं कि खूबसूरत अल्फाज हैं, और बड़े उसको बोलने का अंदाज भी उसका बिल्कुल अछूता, नाजुक और निराला है, तो वो जो जिस अंदाज में पेश किया गया, तो उसका लुत्फ जो है हम जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं अदब से, लिटरेचर से हमारी दिलचस्पी जो है वो और बढ़ सकती है, और हमारी मालूमात में इजाफा हो सकता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि अभी सर ने कहा कि उमराव जान पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपने दिल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसका जो मैसेज है, वहाँ जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में आप सही मायने में वो समझ पाओगे। सर आज आपने उमराव जान के बारे में हमारे बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ की ओर से आपके आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो दो कार्यक्रम हम बच्चों के सामने अभी पेश करेंगे उससे उनको बहुत फायदा होगा। और किस तरह से पढ़ना चाहिए, देखिए पढ़ाई का मतलब खाली अपने एग्ज़ाम क्लियर करना या परीक्षा में पास होना नहीं है। जैसे कि सर ने कहा कि आप उस परिस्थिति में जाओ उमराव जान के ज़रिए, तब के आपको पता चलेगा कि किस तरह से, किस तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करके उमराव जान ने अपनी ज़िंदगी बिताई है और अंत में ये नॉवेल अपने को क्या सीख देता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सैयद झाकिर अली साहब ने बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण किया हुआ है। मैं डॉक्टर साहब का एक बार फिर आभार चाहता हूँ।
थैंक यू सर।
धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर।